মাগো এই সারাদিন বাছুর খুঁজতে খুঁজতে মা বড্ড আমার পিপাসা পেয়েছে মা, আমি একটু জল খেতে পাবো। বলে তুই জল খাবি? বলে তখন যা এখন কুটি লাইছে। বলছে না না মা, মা তোমার বৌমা কৃষ্ণের কথা যদি শুনে তাহলে পাগল হয়ে যাবে মা। ও যে কৃষ্ণের সখা, ওর কৃষ্ণের সখা, কৃষ্ণের অঙ্গের বস্ত্রের সব গন্ধ আছে মা। সেই গন্ধ যদি রাধারানীর নাকে যদি লাগে তাহলে তোমার বৌমাকে আর ঘরে রাখা যাবে না। ও মা তুমি ওকে যেতে দেও না। সুবল দেখতে বিপদ তো খুব, এ বহু কষ্ট করে এলাম, যদি সখাকে বলে এসেছি রাধাকে নিয়ে যাব, কিন্তু এখানে তো প্রবেশ করা বড় কঠিন। ও মা আমি বহুদিন কিন্তু কৃষ্ণের আমি সঙ্গ করো না। বলছে না না মা, ও সখা কৃষ্ণের, ও যে বসন খালা রেখে যা রে, বসন খালা রেখে ওই কৃষ্ণের অঙ্গে গন্ধ আছে সুবল, বসন খানা রেখে যা রে, কৃষ্ণের অঙ্গে গন্ধ আছে সুবল, বসন খানা রেখে। না গো মা, আমি যতদিন গুরুদেবের চরণাশ্রয় করেছি মা, আমি কোনোদিন কৃষ্ণের সখা নাম করি না। বলে তাহলে তুমি জল খাও, জল খাও, খাও গিয়ে নাহি করি মানা, সখার নাম চেনা করি হো, ঘরে আছে রাধা। বাবা তুই জল খা গিয়ে, অন্তর্মনে জল খা, কিন্তু সখার নাম করো না বাবা। মা কেন, কোন সখার নাম করবো না, আমাদের অনেক সখা আছে। তোদের বড় সখা অর্থাৎ জটিলা কুটিলা কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করবে না, আর কৃষ্ণের নাম শুনতে পাচ্ছে না। বলে তোদের বড় সখা, মা আমাদের বড় সখাতে দাও ভাইয়া বলো নাম। তাহলে কোন সখা? বলে না না না, তোদের সেই সব থেকে বড় কালো সখা কৃষ্ণ সখা, অতএব কৃষ্ণের নাম তুমি করো না বাবা, তবে যাও গিয়ে। কোন রকম করে প্রবেশ করেছেন, এখন দেখে রাধারানী চোখে রজন নয়নে কাঁদতেছে। রাধে তুমি কি জন্য কাঁদছ? বলে কি জন্য কাঁদছি সুবল, তুমি কি বুঝতে পারছ না, আমার এই যে শাশুড়ি ননদিনি কৃষ্ণ নাম কখনো করে না, আর কৃষ্ণ নাম কখনো কানে শুনে না। আমার সেই কৃষ্ণের চিন্তা হয়ে আমি কাঁদতে থাকি ভাই। তাহলে কি আমি একজন সখীকে পাঠাই জল আনতে, তার যদি একটু দেরি হয় তখন তাকে ডাকি। কি বলে ডাকি? আই গোবিন্দে, আই গোবিন্দে, আই গোবিন্দে, আই গো বিন্দে। বলে একটি সখীকে যমুনায় জল আনতে পাঠাই, তার যদি একটু দেরি হয় ওই ছলনা করে একবার বিন্দু বলে ডাকি, একবার গোবিন্দ বলে ডাকি। আই গোবিন্দে, আই গোবিন্দে, আই গোবিন্দে। রাধে আমি যে কৃষ্ণকে বলে এসেছি তোমায় নিয়ে যাব, কি করে তুই নিয়ে যাবি? আমি কি করে যাব বল? সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়া স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়া একটি বাছুর করে দিলেন। তখন বলছে সুবল কি করে যাব?
যাওয়াই আমার হলো না রে সুবল, যাওয়াই আমার হলো না, আমার শীতের সিঁদুর বাধা হলো, যাওয়া আমার হলো না রে, শীতের সিঁদুর বাধা হলো, যাওয়াই আমার হলো।
সুবল আমার স্তনযুগল কেমন করে ঢাকা দিব? যোগমায়াকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়া একটি বাছুর হয়েছে। বলে এবার তুমি কোলে করে যাও, আর তোমার বস্ত্রটা আমাকে দিয়ে দাও, আর আমার বসন তুমি পরে যাও। সুবল এই শাশুড়ি ননদেরই বড় কষ্ট দিবে ভাই, তুই কেমন করে রান্না বান্না করবি? রাধে তোমার জন্য আমি একটু কষ্ট করব, তুমি যদি যাও, গোবিন্দকে বলে এসেছি। এই সুবলের বেশ ধারণ করিয়ে রাধাকে আস্তে আস্তে পাঠিয়ে দিলেন। তখন সুবল বলছে দুই কাজ হলো মা, দুই আমার জল খাওয়া বাছুর নেওয়া, দুই কাজ হলো মা, জল খাওয়া আমার জল খাওয়া বাছুর নেওয়া, দুই কাজ হলো মা, জল খাওয়া। এইভাবে গিয়ে সুবলের সঙ্গে সুবল বেশে রাধাকে মিলন করিয়েছিলেন। এই সুবল মিলন পালা অনেক বড়। মহারাজ আছে, আমি একটু অল্প গাইলাম, আপনারা মহারাজ কাছে হরি কথা শুনবে। একবার বদনে ভরে হরি বলো, বদনে ভরে একবার প্রেমানন্দে বাহু তুলে গৌর হরি হরি বলো, প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরি একবার। এইবার আমায় করো দয়া, এইবার বিশ্বভানু রাজনন্দিনী, এইবার করো দয়া, বিশ্বভানু রাজনন্দিনী, এইবার রাধারানীর কৃপাতে মহারাজের কৃপায়। এবারে দীর্ঘদিন প্রায় এক সপ্তাহ আমাদের বর্ষানাতে বাস হবে, রাধারানী কৃপা করে রেখেছে। আমাদের কোনোদিন আমার ভাগ্যে তো অতদিন জুটেনি। আর যে মহাপুরুষকে আমরা এত কষ্ট করে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, কিন্তু তিনি তো এ জগতের কেউ নয়, আমাদের সঙ্গে সাধারণভাবে তিনি চলছেন, কিন্তু এপারের কেউ নয়, সে তিনি সেই রাধারানী রূপ গোস্বামীর নিজজন রাধারানী। তাদের চরণে যেন অনন্ত কোটি নরক হয় তাও ভালো, এই গুরু বৈষ্ণব চরণে যেন কোনোদিন আমরা অপরাধ না করি। এইবার আমায় করো দয়া, এইবার অগ বিশ্বভানু রাজনন্দিনী, এইবার আমায় করো দয়া, বিশ্বভানু রাজনন্দিনী, তোমার আমার তোমার চরণে আশ্রয় দিয়া, এইবার আমায় করো দয়া, চরণে জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় রাধে।
হরে কৃষ্ণ। শ্রীমতী জি নে সুবল সখা কা বেশ ধারণ কিয়া আর আপনে কপড়ে উনকো দে করকে রাধাজি বনা দিয়া আর আপনে আপ ও সুবল বন গই। কিন্তু উনকা বক্ষলতা তো কহিন ঢক সকতা থা, তো ইসলিয়ে বছড়ে কো যোগ মায়া বছড়ে রূপ মে বন গই, ইয়া কোই বছড়া লে লিয়া আর যশোদা রাধিকা জি বছড়ে কো লে লিয়া, জিসসে কি উনকা অঙ্গ ভি ও ঢক গিয়া। একদম সুবল সখা জেসে পগড়ি বাঁধলি, লকটিয়া লে লি আর একদম সুবল সখা বন গই। আর ইধর সুবল রাধিকা জি কে কপড়ে পহন করকে ঠিক দেখনে মে ওয়েসা ওয়েসা হি মুখ ওয়েসে হি বোলি, আর ও উনকা লহঙ্গা চুনরি সব লে করকে সেন্দুর ভি লগা লিয়া আর একদম চুড়ি ভি পহন লিয়া, একদম রাধিকা জি বন গই। ইধর মে বছড়ে কো লেকর কে জবকি কৃষ্ণ সে মিলি, তো কৃষ্ণ পুছনে লগে সুবল রাধিকা জি কেউ নেই আই, রাধিকা জি কো কেউ নেই লায়া, রাধিকা জি আনে কে লিয়ে অসম্ভব হয়, উনোনে হামারে মুখ সে ইয়ে সন্দেশ কৃষ্ণ নেই পহচান সকে, ও পহচান না করকে সুবল সখা সমঝ রহে হ্যায় উনকো। আরে তু রাধিকা কো লানে কে লিয়ে ভেজা আর তুম নেই লা সকা। मैं नहीं ला सका, क्यों? अरे वहां पर चारों तरफ में घेराबंदी है, उसके पति का नाम जानते हो क्या है? अभिमन्यु। अभिमन्यु माने अभिमान की मूर्ति, क्रोध की मूर्ति है। और हमारा जो देवर है वो क्या है? दूर मद महादाम्भिक है। थोड़ा सा कृष्ण का गंध पाने से ही यदि मैं कहूं हमें घर से निकाल दे। और हमारी सास कैसी है? जटिला, जटला पकाने वाली, झगड़ा पकाने वाली, विवाद को मचाने वाली, कोई काम नहीं है बस विवाद करना। और हमारी ननद कैसी है? अरे सुनो तो, तुम समझ नहीं सका अभी, न जाने क्या बुझ नहीं सका। हाँ नहीं, हाँ राधा जी कह रही हैं, क्योंकि सुबल बनी हुई है, इतना बुद्धि नहीं है। ये सुबल कह रहा, सुबल नहीं, सुबल के बेश में राधा जी कह रही हैं और सुबल की आवाज में कह रही हैं। कृष्ण कहा जैसे ये सच कह रही, घेरे में बंदी में राधा जी नहीं आ सकती। सुबल ने कहा मैं हताश हो करके आया, बहुत मैंने चेष्टा की किंतु उनके सामने हमारी कोई भी दाव नहीं लग सकी, इसलिए वो नहीं आ सकी। कृष्ण यह सुनते हाँ राधे आ राधे कह करके पछाड़ रखा गया। जब अत्यंत विरह में कातर हो गए तो उन्होंने बछड़े को रख दिया और अपना बेस थोड़ा सा कपड़ा हटा देने से ही जो सुबल का पहना था अपना पहन लिया, तो कृष्ण जी ने देख करके या फिर एकदम लुप्त हो गए और आंगलिंगन पास में बद्ध कर लिया और प्रेम से दोनों मिलकर के एक हो गए। बोलो गौर प्रमाण। एक श्लोक याद आ रहा, क्या श्लोक? कलि दोष निधे राजनस्तेह को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधः परब्रजेत। कलि काल में बहुत से दोष हैं, लाखों दोषी दोष हैं। देखो जहां कदंब के पेड़ थे यहां पर बबुल के पेड़ आ गए, यहां पर भक्त लोग थे भक्त लोगों का आदर नहीं, दुर्जनों का बदमाशों का जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनका आदर। कली काल में धनी कौन है? कली काल में धन उनके पास में जो बदमाश हैं, जो चोर हैं, डकैत हैं, भगवान के विरोधी हैं, वो धन में प्रमत्त होकर के भक्तों का अनादर करते हैं। ये बबुल के वृक्ष भी, कदम्ब के पेड़ और मालती के कुंज और दूसरे जो कुंज हैं उन सब कुंजों को हटाकर जबरदस्ती दखल कर लिया। अभी कुछ दिन में आने वाला है ये मंदिर भी नहीं रहेंगे, दुष्ट लोग मंदिरों को भी तोड़ करके अपना कब्जा कर लेंगे और वहां पर क्या बनाएंगे? प्रोस्टिट्यूट का घर, रहने का घर बनाएंगे, क्लब, नाइट क्लब बनेंगे वहां पर, ऐसा दुर्दिन होने को आ रहा है ना? तो अभी कली का एक गुण है, क्या गुण? एक कृष्ण का नाम कीर्तन करके चलते फिरते उठते बैठते छींकते फिसलते भी कृष्ण का नाम करके मुक्त बंधा परम ब्रजेत, मुक्त बंध हो करके ब्रजेत। कहां ब्रजेत? कहां जाता है? ओ ब्रज में जाता है ब्रजेत, इस शब्द के द्वारा ये है। मुक्त बंधा परम ब्रजेत, मुक्त हो जाता केवल यही नहीं ब्रज में भी प्रवेश कर जाता है। दैट इज वाई ही है रिटन, व्यास देव हैज रिटन दिस नेम ब्रजेत, ब्रजे ब्रजेत, मुक्त बंध भी हो जाता। इसी तरह से कली काल में ये सब जो स्थान हैं अब छिप गए हैं बबल से, दुष्ट लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, जहां जहां भी जाएंगे देखेंगे अतिक्रमण हो रहे हैं, स्थान सब आच्छादित हो रहे हैं। जिस प्रकार से वज्रनाभ ने फिर से उद्धार किया, फिर चैतन्य महाप्रभु, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ दास गोस्वामी ने फिर से जगत में इन सब का आरूप सनातन ने अंत में ये सब का ब्रज का प्रकाश किया। तो ऐसे ही ये यद्यपि ये सब आच्छादित हो रहे हैं कली काल में, तभी तो भक्त लोग आते हैं और आकर के बीच बीच में इन झाड़ियों के बीच से दिखलाते हैं, दर्शन कराते हैं और कृष्ण की लीला कथाओं का, राधा जी के लीला कथाओं का ये स्मरण दिलाते हैं। इसलिए आप लोग भी धन्य हैं, कांटे में आकर के बैठे हैं, कोई परवाह नहीं है। दोपहर में सूर्य तप रहा है, आप लोग कभी भी ऐसा धूप पाश्चात्य देशों में नहीं देखा होगा, इतनी गर्मी नहीं देखा होगा, किंतु आप हम लोगों के साथ में कृष्ण के लीलाओं के स्थानों को दर्शन करने के लिए इतना कष्ट कर रहे हैं। कृष्ण आप लोगों पर कृपा करें, राधा जी आपके ऊपर में कृपा करें। एंड हिज प्रेसिडेंट क्लिंटन एंड ही सो बोगस दैट यू नो इन ऑलवेज इन न्यूज पेपर हिज ग्लोरिफिकेशन।
नाउ दे आर लीडर्स ऑफ होल वर्ल्ड
एंड दोज हु आर एक्चुअली वेरी बोनाफाइड वैष्णव रिलीजियस माइंडेड हेल्पिंग टू ऑल अदर्स। Now they have no place in society, nowhere. But still, Krishna can shower his mercy to them, not to the rich person and these dacoits and all characterless persons. So similarly, everywhere is bade sampatti ka adhikari hain, bhool gaye hain. मनुष्य जन्म का प्रधान कर्तव्य क्या है, इसको समझना चाहिए. सुअर और गधों की तरह जीवन को यापन करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है. जो बड़े बड़े धनी आदमी हैं, अरे यहाँ की क्या बात करो, अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, कहाँ कहाँ सब बड़े बड़े लोग हैं, क्या कर रहे हैं? स्त्री के साथ में रहते हैं, बाल बच्चे होते हैं, ये तो गधे, भेड़, कुकर, शुकर भी कर सकती है. इसके लिए हमने जन्म नहीं लिया. मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, इस चोले के अंदर में आत्मा और परमात्मा है. शरीर बदल जाएगा, चोला बदल जाएगा, हम स्त्री से पुरुष बन जाएंगे, पुरुष से वृक्ष बन जाएंगे, गधे घोड़े बन जाएंगे, ऐसे हमारे शास्त्रों में प्रमाण है. किंतु आत्मा अजर अमर एक रस है, वो नहीं बदलती. और इन सब आत्माओं के जो प्रभु हैं वो कभी नहीं बदलते. उन्हीं को लोग गॉड कहते हैं, उन्हीं को लोग खुदा कहते हैं, उन्हीं को कोई ईश्वर कहते हैं, उनको कोई परमात्मा कहते हैं, उनको कोई भगवान कहते हैं, उनको कोई स्वयं भगवान कहते हैं. किंतु ये समझ रखो, ये इतना जो कहा है, गॉड कहा, ईश्वर कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, ईश्वर कहा, जगन्नाथ कहा, परमात्मा कहा, ब्रह्म कहा, ये सब तुम्हारे ब्रज में जो काला कनुआ था, छोटा सा जो कन्हैया था, कृष्ण थे, उनके अंश के कला के विकला थे. वो कृष्ण यहाँ पर बंसी लेकर के बंसी बजाया, उसके चरण के चिन्ह यहाँ पर उदित हुए. आप लोग कितने सौभाग्यवान हैं, आप लोग अपनी महिमा नहीं समझ रहे. बड़े बड़े संत लोग आपकी महिमा समझते हैं, जिस ब्रज में आपका जन्म हुआ. और कुकर की तरह, शुकर की तरह खाने पीने और धन कमाने में, और आजकल टीवी और ये सब देखने में, घरों घरों में टीवी आने लगी. ये टीवी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाली है, संस्कृति को. इसलिए देखिए, ये विदेशों से कितने धनी मानी पढ़े लिखे विद्वान लोग, कहां अमेरिका, इंग्लैंड, कहां कहां से ये लोग खाली पैर, जो जिनके 10-10, 20-20, 50-50 गाड़ियां हैं, कार हैं, बड़े बड़े कारखाना हैं, और ये लोग यहां पर घूम रहे हैं खाली पैर, बिना जूती के, बिना कार के नहीं निकलते, और ये लोग घूम रहे हैं किस लिए? उसी छोटे कन्हैया के प्रेम के लिए. जिसको इस कृष्ण से प्रेम नहीं है, उसका जीवन दुर्भागा है. वो सुअर, कुकर और गधे की तरह है. अरे तुमको एक बच्चा एक वर्ष में होता है, और सुअर को एक साथ में 16 बच्चे होते हैं. कौन बड़ा भारी तुमने मनुष्य होकर के कर लिया? तुम्हारी अपनी लड़की की शादी करने के लिए, रुपए के लिए तुम इधर उधर भटकता है. सुअर अपने बच्चों को, और गधे और कुकर अपने बच्चों की शादी के लिए भटकते हैं कहीं? उनको खाने की कमी है? सुअर को खाने को कमी है? ताजे ताजे उनको रोज मलपुआ से स्वादिष्ट उनको मिल जाता है. आप गलीचे पर आपको नींद नहीं आती, और वो जहां तहां रमते हैं, बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, और उनको, तुमको एक स्त्री से दूसरी स्त्री करेगा तो तुमको गवर्नमेंट जेल में बंद कर देगी. और उनको 500 स्त्रियां हैं, सैकड़ों स्त्रियां हैं. तो सुख से दृष्टि से तो तुमसे ये सब कुकर, सुकर, गधे बड़े हैं. गधे को गधी नहीं होती और उनको बच्चे नहीं होते. आखिर धन मिलकर के क्या हुआ? धन को लेकर के जाएगा ना, क्या करेगा तू? वो भी नंगे जाएगा, वो भी शरीर को लोग जला देंगे. इसलिए प्यारे भाइयों, यदि भगवान का, उस कृष्ण का भजन नहीं किया जो कृष्ण में आए, ब्रज में आए, खेले कूदे, सखाओं के साथ में गोचारण किया, घरों में दही दूध मक्खन चुराया, वो स्वयं भगवान के भगवान के भगवान हैं, अल्लाह खुदा उनके नख की ज्योति है, ब्रह्म उनकी नख की ज्योति है। गॉड, गॉड मैंने क्या, जी ओ डी, आप लोग ग्रामवासी भी पढ़े होंगे, जी ओ डी, जी मैंने क्या, जेनरेटर माने जिससे जन्म होता है जगत, ओ माने ऑपरेटर जो विश्व ब्रह्मांड का संचालन करता है, पालन करता है, संचालन करता है, और डी माने डिस्ट्रक्टर जो ध्वंस करता है। वही भगवान हमारे ब्रह्म का ही अर्थ है। ऐसे जो ब्रह्म और गॉड हैं वो कृष्ण की पदनों की ज्योति हैं, केवल कृष्ण भाई इतने बड़े हैं, उनको देख करके हिरण तक आकर्षित हो जाते थे, मनुष्यों की तो बात क्या, उस कृष्ण का नाम करने से ही कल्याण हो जाएगा। बंगाल में आज से 500 वर्ष पहले की बात है, दो ब्राह्मण के लड़के थे, बड़े धनी थे और बड़े बलवान हृष्ट पुष्ट, एक का नाम जगाई और दूसरे का नाम मधाई। लोग उनसे डर के मारे कांपते थे, उनके सामने नहीं आते थे, दिन रात मदिरा पान करते थे, बेश्याओं के साथ में रहते, दुराचारी, बड़े भयंकर थे। उनका नाम सुनकर के लोग कांप जाते, जिस रास्ते पर रहते उसे स्त्रियां नहीं चल सकती थी, लोग डर के मारे दूसरे दूर रास्ते से जाते थे। उसी समय में चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हुआ। नित्यानंद हरिदास जी को बड़े भक्त थे, वो क्या करते थे, 300,000 नाम करते थे, सोते नहीं थे, कब खाते थे क्या खाते थे किसी को पता नहीं, दिन रात नाम करते रहते। महाप्रभु जी ने कहा देखो भगवान का नाम लो, धीरे धीरे मत लो, जोर से लो, जितना जोर से भगवान का नाम लेगा उतना ही वृक्ष भी सुनेंगे, पशु पक्षी सुनेंगे, कीट पतंग सुनेंगे, और उनका सुनने से ही नाम उद्धार हो जाएगा। आज जो लोग नाम कर सकते हैं वो कृष्ण का नाम जैसे तैसे चलते फिरते उठते बैठते सोते छींकते समय में भी भगवान कृष्ण का नाम करेंगे, वो माया से पार हो जाएंगे, उनका जन्म मरण दूर हो जाए, उनके सारे दुख क्लेश दूर हो जाएंगे और वो भगवान के धाम में चले जाएंगे। इसलिए हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद जी गए और पियक्कड़ से बोले, अरे तू क्या कर रहा है जानवर जैसा, तुम चेतन हो करके और मदिरा पान करके अचेतन हो रहा है, तुम हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोल हरि बोल, गौर प्रमाण। वो सुन करके बहुत बिगड़ गया और मारने के लिए दौड़ा, और जो मदिरा पान कर रहा था वो कलसी को तोड़ करके, कलसी माने घड़ा, घड़े को तोड़ करके और एक उठाया और उसे मारा। नित्यानंद जी को चोट लगी और खून की रक्त धारा बहने लग गई। किसी ने खबर दिया महाप्रभु जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को, और खबर लगते ही वहां से चले आए, हजारों भक्त लोगों के साथ में आए और कहा जे चक्र चक्र, साथ साथ उनके हाथों में चक्र गया और छोड़ने वाले थे दोनों को मारने के लिए, किंतु जिसको चोट लगी थी नित्यानंद प्रभु, जिसने कहा था जी हरि बोलो, उन्होंने ने प्रभु प्रभु इसको मत मारिए, ये जगाई हमको जब मारने मधाई न के मारते ऐसे छुड़के रखे, मधाई ने मारा था तो जगाई हमको मना कर रहा था जी अरे ये साधु है क्यों मार रहा है, तो इसलिए आप इसको मत काटिए। साथ ही साथ आए तुमको बचाया, बस उन्हें थोड़े से लेकर के छाती में लगा लिया और वो कांजनी कैसे कृष्ण 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 कह करके रोने लगा और उनके चरणों में लोटपोट करने लगा। मधाई ने कहा अरे हम दोनों एक साथ में पियक्कड़ थे, अत्याचारी थे, आपने इसको कृष्ण नाम दे करके प्रेम दे दिया और मैं वैसा का वैसा रह गया। महाप्रभु जी ने कहा ये तुमने नित्यानंद प्रभु को मारा है, तुमको क्षमा नहीं करता। फिर जाओ तुम नित्यानंद जी के पास। नित्यानंद प्रभु जी ने उसे क्षमा कर दिया और महाप्रभु से बोले, मैंने इसे क्षमा कर दिया है, आप इसको भी प्रेम दी। महाप्रभु ने उसको भी कृपा कर दी। जो डकैत थे, इतने बड़े अत्याचारी थे, ऐसे डकैत थे कि उनका नाम सुन करके थर्राते थे आसपास के सभी लोग, किंतु भगवत भक्त की महिमा से, भगवान की कृपा से, भगवान कृष्ण का नाम कहने मात्र से बदल गए। और वो डकैत, खूनी, अत्याचारी, मदिरापान करने वाले और कैसे बन गए? महात्मा जी बन गए। अब वो लोग कृष्ण कृष्ण सब समय करते, क्या करते? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिन रात अब करने लगे। और जहां पर गंगा जी का घाट था, वहां गंगा जी के घाट को अब धोने लगे और वैष्णव की चरण धूलि लेकर के सिर में लगाने लगे और सबको प्रणाम करने लगे, स्त्रियों को अपनी मैया और बेटी समझने लगे। इस तरह से एकदम टोटली बदल गए। ये नाम की महिमा है। आप लोग जानते हैं, जब कृष्ण का जन्म हुआ, अभी 2 दिन के बच्चे थे, पुतना राक्षसी को कंस ने भेजा और वो अपने सूखे हुए स्तनों में कालकूट विष लेकर के आई। कैसे आई? अपना वेश छिपा दिया और मैया का वेश बनाया। बहुत मंत्र जानती थी, सिद्ध जैसी, और उसने मैया का सुंदर रूप धर लिया और बड़ी युवती सी, बड़ी सुंदरी बन गई और स्तन में कालकूट विष लगाया। बेटा तो था नहीं, दूर कहां से आए। फिर उस समय में कृष्ण को कहा, रे बेटा बेटा, कृष्ण को कहा और गोदी में पलंग से लेकर के, पलने से लेकर के अपनी गोद में ले लिया और अपने स्तन में तो विष, तो विष भरा पड़ा, जोर से दबाया, कृष्ण के मुख में गया। कृष्ण ने देखा, कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, कहा जी मैया का वेश बना करके आई, जैसे भी मैया का वेश बना करके, और हमको एक बार बेटा भी कह दिया जैसे तैसे। कृष्ण कितने बड़े दयालु हैं कि उसने उसके प्राण खींच लिए और उसको पवित्र बना दिया और माता गौरी को देकर के बैकुंठ में भेज दिया। कैसे कृष्ण बड़े दयालु हैं? देखो, एक अघासुर नाम का राक्षस, वो पाप की मूर्ति था, सारे पाप, मातृहत्या, गोहत्या, पितृहत्या, गुरु हत्या, सबका पाप का मूर्ति था। कंस ने उसे भेजा जे कृष्ण को मारो। सखाओं को लेकर के कृष्ण गायों को चराने के लिए जा रहे थे और उस समय में सखा ने देखा जे ये पहाड़ की कंदरा है, उसमें बच्चों ने कहा जे चलो इसमें देखाएंगे इस कंदरा को, उसमें बड़ी दुर्गंध आ रही थी। कहा जे कोई बात नहीं, चलो तो कृष्ण भैया तो है। किसी ने कहे ये तो देखने में बड़ा भारी पर्वत है किंतु सांप जैसा है। अरे सांप हो, आग हो, जो कुछ भी हो, भैया हमारा कृष्ण है, कोई डरने की बात नहीं। बस सब सखा लोग अपने गायों को लेकर के भीतर में प्रवेश कर गए और वहां जाकर से उसके पेट में मूर्छित हो गए। वो अघासुर था, बड़ा विकराल, 6 मील लंबा, उसका मुख एकदम ऊपर, एक होठ और दूसरा नीचे, और नीचे जीभ को अपना लाल कालीन जैसा बिछा दिया, सड़क बना लिया कालीन, उसमें बिछा दिए जे कृष्ण आए। कृष्ण सोच रहे ठीक है, कृष्ण पीछे थे, अरे सखाओ मत जाओ, ये सांप है, तुम्हें निगल लेगा। किंतु उन्होंने सुना नहीं, भीतर में प्रवेश कर गया और उसने मुख ऐसा ही बनाए रखा। कृष्ण ने कहा जी हमारे सखा लोग चले गए, हम आपके अंग रहे, वो भी प्रवेश कर गए। हुआ क्या, कृष्ण प्रवेश करने के साथ ही उसने मुख बंद कर दिया और कृष्ण वो समझता था कि साधारण सा बालक है। कृष्ण उसके गले में जाकर के लोहे के बड़े गोले के जैसे एकदम लाल पिंड बन गए और सांस की नाली में अटक गए। अब उसी नीचे का सांस नीचे, ऊपर का सांस ऊपर, श्वास बंद हो गया, गोल गोल आंखें निकल आई, रोक नहीं सका, छटपट छटपट करने लगा और अंत में ब्रह्मांड उसका फट गया, उसका प्राण निकल गया। निकल जाने के बाद में उसकी आत्मा आकाश में ज्योति के रूप में घूमने लगी। कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि से, अमृत भरी दृष्टि से बच्चों और गायों की तरफ में देखा। देखते ही सब लोग जीवित हो गए और उनको बाहर में निकाला। जब कृष्ण बाहर आए तो वो ज्योति जो घूम रही थी वो आकर के कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर गई। वो संसार से मुक्त हो गया, सर्प योनि से निकल गया। देखो ब्रह्मा, शंकर, बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि मूर्ति लोग, भक्त लोग चाहते हैं कि हम कृष्ण के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करें और वो नहीं आते। जब ब्रह्म शुक नारद भीष्म कई अलक्षितो न सहसा पुरुष नहीं आते, और अघासुर ने कौन सा पुण्य किया जो उसके भीतर में गाय और सखा और बछड़ों और सखाओं के साथ में उसके भीतर में प्रवेश कर गए, सशरीर अपने चरण कमल अपने शरीर के साथ में, कौन सा ऐसा बड़ा पुण्य था? और हुआ क्या इससे, जब उसका शरीर निर्जीव हो गया, उसकी आत्मा कृष्ण के चरणों में चली गई, तो हुआ क्या, वो तो मुक्त हो गया।